ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकार ने 15 जिलों के 2,71,000 गरीब परिवारों की सूची को किया स्वीकृत। शांति प्रक्रिया से जुड़े संक्रमणकालीन न्याय संबंधी विधेयक पर विचार विमर्श है अंतिम चरण में। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर देश में आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम। नेपाल में वयस्क बाघों की संख्या है 355 और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो तीसरे कार्यकाल के लिए हुए निर्वाचित। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने 15 जिलों के 2,71,000 से अधिक गरीब परिवारों की अंतिम सूची को स्वीकृत किया है। सावन 10 कते की मंत्रिपरिषद बैठक के निर्णय साझा करने के लिए आज सिंह दरबार में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गरीब परिवार पहचान तथा परिचय पत्र वितरण निर्देशिका 2075 के मुताबिक ओखलढुंगा, कंचनपुर, गुलमी, दोलखा, धनुषा, नुआकोट, बारा, परसा, बैतड़ी, मनांग, मुस्तांग, रूपंदेही, सरलाही, सप्तरी, सिंधुपालचुक लगात जिलों के गरीब परिवारों की पहचान कर बनाई गई सूची को सरकार ने स्वीकृत किया है। इसी तरह विश्व बैंक से प्रादेशिक और स्थानीय सड़क सुधार कार्यक्रम के पहले चरण अंतर्गत सहूलियत दर पर उपलब्ध होने वाले 13,33,00,00,000 के कर्ज को स्वीकार करने का निर्णय भी सरकार ने किया है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद बैठक में नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तैयारी समिति गठन द्वितीय संशोधन आदेश 2081 को स्वीकृत करने लगाये निर्णय भी किये। संसदीय सुनवाई समिति ने निर्वाचन आयोग के आयुक्त के रूप में सिफारिश किए गए कृष्णमान प्रधान के नाम को अस्वीकृत करने का फैसला किया है। आज हुई समिति की बैठक ने प्रधान के नाम को अस्वीकृत करने का फैसला लिया। आज सुनवाई समिति की बैठक से पहले प्रधान ने समिति को निवेदन देकर कहा कि उन्होंने निर्वाचन आयुक्त से अपना नाम वापस ले लिया है। इसी के आधार पर समिति ने आवेदन अस्वीकृत करने का निर्णय किया। संवैधानिक परिषद द्वारा निर्वाचन आयुक्त पद के लिए सिफारिश किए गए प्रधान के विरुद्ध संसदीय सुनवाई समिति में यौन हिंसा और दुर्व्यवहार के मामले में शिकायत दर्ज हुई थी। प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रीय सभा में उत्पन्न शहीद दशरथ चंद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2080 पर विचार विमर्श करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया है। इसी तरह कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री अजय कुमार चौरसिया द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय सभा में उत्पन्न विधायन संबंधी विधेयक 2080 को धारागत विमर्श के लिए संबंधित समिति में भेजने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। बैठक में विचार विमर्श के दौरान उठे विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देते हुए गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि आपदा की पूर्व तैयारी और प्रतिकार्य राष्ट्रीय कार्ययोजना अनुसार मातहत के निकायों के समन्वय में सरकार काम कर रही है। इससे पूर्व प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सांसदों ने पिछले समय में बढ़ते जा रहे सड़क हादसे, हवाई दुर्घटना लगातार समसामयिक विषयों में सरकार का ध्यानाकृष्ट किया था। आज विश्व बाघ दिवस नेपाल में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर मनाया गया। सन 2022 में किए गए राष्ट्रीय बाघ सर्वेक्षण के मुताबिक नेपाल में वयस्क बाघों की संख्या 355 है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि नेपाल के साहित्यकारों में युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ सामाजिक और न्यायिक चेतना की दृष्टि से उच्च कोटि के कवि हैं। सिद्धिचरण श्रेष्ठ की 113वीं जयंती के मौके पर आज काठमांडू में सिद्धिचरण प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि वे साहित्यिक तौर पर सिद्धिचरण से प्रभावित थे। इस अवसर पर 1,00,000 रूपये के युग कवि सिद्धिचरण पुरस्कार से प्राध्यापक डॉ उषा ठाकुर को सम्मानित किया गया। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि मीडिया काउंसिल विधेयक प्रेस स्वतंत्रता के पक्ष में रहते हुए बनाया जाएगा। राष्ट्रीय सभा की विधायन व्यवस्थापन समिति की बैठक में मीडिया काउंसिल विधेयक 2080 पर हुए विमर्श के दौरान मंत्री गुरुंग ने कहा कि संचार क्षेत्र को मर्यादित, व्यवस्थित और सुदृढ़ करने के लिए विधेयक लाया जा रहा है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। संक्रमणकालीन न्याय संबंधी टीआरसी विधेयक निराकरण के करीब पहुंचा है। आज गृह मंत्रालय में हुई बैठक में टीआरसी संबंधी मूल विधेयक उपसमिति द्वारा पेश की गई रिपोर्ट, इससे पूर्व हुए विमर्शों के विषयों को एक साथ लाकर कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये बात लगभग तय हो चुकी है। ये बात नेकपा एमआलए के मुख्य सचेतक महेश कुमार परतौला ने बताई। उन्होंने बताया कि आने वाले बृहस्पतिवार की सुबह बैठक बुलाकर अब तक किए गए विमर्शों की समीक्षा करके प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। विचार विमर्श में सहजीकरण कार्यदल के सदस्य एवं गृहमंत्री रमेश लेखक, एमआलए के मुख्य सचेतक बरतौला और माओवादी केंद्र से उप महासचिव जनार्दन शर्मा सहभागी थे। पोखरा में स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त होने से मां और बेटे की मौत हो गई। पोखरा पार्टी विरोटा के एलपी मेमोरियल स्कूल की बस पोखरा महानगर पालिका वार्ड नंबर 21 के मट्टी खान के नजदीक गिंगकू के पहाड़ से गिरने से यह हादसा हुआ। हादसे में विद्यालय की कर्मचारी पोखरा वार्ड नंबर 21 रामदीप की 33 वर्षीय आरती विश्वकर्मा और उनके 6 वर्षीय बेटे प्रिंस विश्वकर्मा की मौत हो गई, ये जानकारी पुलिस ने दी। बता दें कि दुर्घटना में चालक सहित 28 लोग घायल हैं। गोरखा की धारचे गांव पालिका में बीते रविवार सुबह आए भूस्खलन में लापता हुए 5 लोगों में से 4 के शव मिले हैं और अन्य एक की तलाश की जा रही है, ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय गोरखा के डीएसपी एवं सूचना अधिकारी रमेश कुमार श्रेष्ठ ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। वेनेजुएला में हुए राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर निकोलस मादुरो की सत्ता में वापसी हुई है और वो लगातार तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुने गए हैं। हालांकि विपक्ष ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए नतीजों पर सवाल उठाए हैं। वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव के लिए रविवार को मतदान हुआ था। वेनेजुएला के चुनाव आयोग नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल के प्रमुख एल्विस इमोरोसो ने बताया कि निकोलस मादुरो को 51% वोट मिले, वहीं विपक्ष के नेता एडमुंडो गोंजालेज को 44% मत मिले। विपक्ष अपनी जीत को लेकर इतना सुनिश्चित था कि चुनाव नतीजे आने से पहले ही विपक्ष के नेताओं ने सोशल मीडिया पर जीत के दावे करना और जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। एग्जिट पोल्स के नतीजों में भी गोंजालेज को बड़े अंतर से जीतता हुआ बताया गया था, जिससे विपक्ष के हौसले बुलंद थे। हालांकि जैसे ही नतीजे सामने आए तो विपक्ष हैरान रह गया। विपक्ष चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहा है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने 15 जिलों के 2,71,000 गरीब परिवारों की सूची को किया स्वीकृत। शांति प्रक्रिया से जुड़े संक्रमणकालीन न्याय संबंधी विधेयक पर विचार विमर्श है अंतिम चरण में। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर देश में आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम। नेपाल में वयस्क बाघों की संख्या है 355 और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो तीसरे कार्यकाल के लिए हुए निर्वाचित। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।